द्वितीयो अध्याय प्रथम पादा। इस प्रकरण पर विचार करने से पहले सांख्य स्मृति को समझ लेना उचित है। कपिल नामक एक ऋषि हुए, उन्होंने वेद उक्त कर्मकांडों को ज्यों का त्यों स्वीकार किया और ज्ञान कांड के विवेचन में सांख्य स्मृति की उन्होंने रचना की। उसमें मोक्ष को मोक्ष की कामना वाले मनुष्यों के उपकार के लिए उपाय बताए गए। जड़ प्रकृति को ही स्वतंत्र रूप से जगत का कारण कहा, ब्रह्म को जगत का कारण न कहने के कारण उसे प्रमाण मानना उचित नहीं है। उन सभी स्मृतियों ने जगत का परम कारण ब्रह्म को ही कहा है, इसलिए वेद उक्त मत का संपादन करने वाली स्मृतियां ही मान है। सांख्य स्मृति के अनुसार पुरुष और जीवात्माएं विभु एवं चिन्ह मात्र है, उनका बंध और मोक्ष प्रकृति ही करती है। बंध और मोक्ष दोनों ही प्रकृति है। सर्वेश्वर रूप से कोई विशिष्ट पुरुष नहीं, इत्यादि वेद विरुद्ध बातें होने के कारण सांख्य स्मृति मानता के योग नहीं है। पतंजलि ऋषि ने योग शास्त्र की रचना की, उसमें उन्होंने दृश्य अर्थात दिखाई पड़ने वाली जड़ प्रकृति को जगत का स्वतंत्र कारण बताया, इसलिए योग का सांख्य से मतभेद होने पर भी जड़ प्रकृति को जगत का कारण मानने के कारण योग शास्त्र भी वेद के विरुद्ध है। यद्यपि उसमें ब्रह्म को सभी कारवश किया है, परंतु उस सभी पारोक्ति में शंका अधिक होती है। यह विश्व ब्रह्म से विलक्षण भिन्न रूप वाला होने से ब्रह्म रूप होना अथवा ब्रह्म का उत्पादक होना सिद्ध नहीं है, क्योंकि जगत के लक्षण ब्रह्म के समान नहीं है। ब्रह्म चेतन है, जगत जड़ है। ब्रह्म मुक्त है, जगत बद्ध है। ब्रह्म शुद्ध है, परंतु जगत शुद्ध नहीं है। इस प्रकार वेद द्वारा जाना गया ब्रह्म ही सबका कारण मानना चाहिए। छंदों के अनुसार तत् तेज ईक्षत बहुश्याम अर्थात तेज ने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊं, तब उसने जल को रचा, जल ने भूमि को रचा। इस पर तत्वों के अवमानी देवताओं का वर्णन हुआ और अग्नि वाणी बनकर मुख में गया, इस प्रकार उनकी अनुगति अनुकूल का वर्णन किया गया है। यह कहना ठीक है कि उपादान से उत्पन्न होने वाला कार्य उनसे विलक्षण होता देखा गया। मनुष्यादि चेतन जीवों से नख लोम आदि जड़ वस्तुओं की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार चेतन से जड़ की उत्पत्ति में विलक्षणता है। मक्खी आदि से किर्म आदि का उत्पन्न होना भी एक विलक्षणता ही है। यदि यह कहा जाए कि अवैवहीन चेतन ब्रह्म से अवैध वाले जड़ प्राणों की उत्पत्ति मानने से पहले से न होने वाले वस्तु के मानने का दोष उपस्थित होगा, परंतु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दृष्टेतु सूत्र में कार्य और कारण की समानता का निषेध मिलने पर भी कारणभूत ब्रह्म अपने से विलक्षण जगत के रूप में प्रकट होता है, इस बात का निषेध नहीं किया है। यदि कार्य और कारण को समान मान ले तो उत्पत्ति स्थिति और प्रलय काल दोष युक्त कार्य कारण में रहने से ब्रह्म में भी बेदोष आ जाएंगे और तब ब्रह्म को सत संकल्प आदि गुण वाला और दोष रहित कहने वाली श्रुतियों की विध्यात्म का दोष लगेगा। इसलिए श्रुतियों द्वारा कहे गए ब्रह्म के लक्षण ही ठीक मानने चाहिए। पूर्व सूत्र में की गई शंका निर्मूल है, क्योंकि कार्य जब अपने कारण में विलीन हो जाता है तब कार्य के धर्म भी कारण में विलीन हो जाते हैं। जैसे स्वर्ण के आभूषण गला देने के बाद स्वर्ण ही बन जाते हैं, तब उनके लक्षण स्वर्ण में दिखाई नहीं देते। इससे परले अथवा उत्पत्ति किसी भी अवस्था में कारण का अपने कार्य के धर्मों से सिद्ध होना सिद्ध नहीं होता। अपने धर्मों कार्य के धर्मों से लिप्त होना सिद्ध नहीं होता। प्रधान को कारण मानने से जगत की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। सांख्यवादी स्वयं भी जगत के कारण रूप प्रधान को अवैध रहित अप्रगट और अग्रहज कहते हैं। उससे साकार प्रकट और देखने सुनने आदि से ब्रह्म जगत की उत्पत्ति मानने से कारण की विलक्षणता स्वीकार होती है। फिर उत्पत्ति के पूर्व कार्य के शब्द स्पर्श आदि लक्षण प्रधान में नहीं रहते और बाद में कार्य में आ जाते हैं। इसके सिवा परलय काल में सब कार्यों के प्रधान में लय हो जाने पर प्रधान में कार्यों के शब्द स्पर्श आदि लक्षण नहीं रहते। इन सब कारणों से भी जग का कारण प्रधान को मानना उचित नहीं है, क्योंकि प्रधान को कारण मानने में उक्त सभी दोष उपस्थित हैं। तर्क परस्पर खंडन रूप होने से उनकी मान्यता नहीं होती, क्योंकि बुद्धि वृत्ति में विभिन्नता होने के कारण अनुमानों में भी विभिन्नता होती ही होगी ही। यद्यपि अर्थ दृष्टि से तर्क को ठीक मान लिया जाए तो भी ब्रह्म में तर्क की अपेक्षा नहीं है। तर्क बुद्धि से तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और तत्व ज्ञान के बिना मोक्ष असंभव है। इसलिए ब्रह्म विषय में श्रुति ही प्रमाण है। सांख्यमत वालों द्वारा उपस्थित तर्कों का निराकरण करने से अन्य शिष्ट पुरुषों द्वारा भी जो अमान युक्तियां उपस्थित की गई उनका भी खंडन हो गया और इस सब से यह सिद्ध हुआ कि वेद द्वारा वर्णन मत ही ब्रह्म विषय में यथार्थ ज्ञान कराने वाला है। इसलिए वेद से प्रतिकूल मतों की मान्यता नहीं दी जा सकती। यदि ये शंका करो कि ब्रह्म को जगत का कारण मान लेने पर जीव द्वारा कर्म फल रूपी भोगों का भोगतापन ब्रह्म में भी सिद्ध होगा, इससे जीव और ब्रह्म की भिन्नता तो सिद्ध होगी ही नहीं, साथ ही जड़ में भोगतापन का रूप होने से भोग और भोगता की भिन्नता भी न हो सकेगी, परंतु यह शंका निर्मूल है क्योंकि संसार में इस प्रकार की भिन्नता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। पिता का अंशभूत बालक गर्भ की पीड़ा को स्वयं भोगता है, पिता नहीं भोगता, और पिता तथा बालक का पृथक पृथक होना भी प्रत्यक्ष है। इसी प्रकार जीव और ब्रह्म की भिन्नता नष्ट नहीं हो सकती और ब्रह्म में भोगतापन का आरोप नहीं हो सकता। जैसे शासित और शासक का विभाग स्पष्ट है, वैसे ही जीव और ब्रह्म के विभाग को भी अमन नहीं किया जा सकता। छंदोग में यथा सौमेकेन मृतपिंडे इत्यादि के अनुसार मिट्टी के ढेले से ही मिट्टी से उत्पन्न कार्य जान लिए जाते हैं। नाम आकृति के भेद तो वाणी से कहने के लिए होते हैं, यथार्थ में तो वह सब मिट्टी ही है। इसी प्रकार कार्य रूप में स्थित यह जगत भी ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्म ही है। इस प्रकार ब्रह्म की जगत से मन मनता का बोध होता है। जब कार्य अपने कारण में निहित रहता है तभी उसकी उपलब्धि हो सकती है। आभूषण रूप कार्य अपने कारण रूप स्वर्ण में निहित रहने पर कार्य रूप में ही उपलब्ध रहता है। कारण भूत द्रव केवल अपने रूप को बदल लेता है, परंतु उसका स्वर्णत्व उससे दूर नहीं होता। ऐसे कार्य और कारण की अमानता सिद्ध होती है। छंदोग के सदैव सोमेद मगर आसीत कहा गया है कि हे सोम, यह उत्पत्ति से पहले भी सत था, तथा श्रुति वचन के अनुसार जैसे ब्रीही के बीज में मूल नाल पत्तर अंकर कांड कोश पोषक क्षीर तंडल तुच्छ और कण विद्यमान रहकर पर रोह को की कारण रूप सामग्री पाकर ब्रीही में ही उत्पन्न होते हैं, वैसे ही कर्मों में देवताओं का देह अवस्थित रहता है, परंतु वे सब देव विष्णु की शक्ति को प्राप्त कर प्रकट होते हैं। वह विष्णु जगत की सृष्टि स्थिति पालन आदि के करता है। इस प्रकार कार्य और कारण की अमन्नता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि कहो कि छंदोग के अनुसार यह जगत उत्पन्न होने से पहले असत ही था, इसी प्रकार छंदोग ने कहा है कि कोई कोई कहते हैं कि यह जगत पहले असत था, एक मात्र वही था अन नहीं, फिर उस असत से सत प्रकट हुआ। ऐसी ही बात तैतरीय उपनिषद में भी कही है। इस प्रकार जगत के लिए असत कहा जाने से कारण में कार्य का असत्व नहीं दिखाई देता, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि छंदोग में प्रश्न है कि असत से सत कैसे प्रकट हो सकता है, ऐसा होना कैसे संभव है। इसका उत्तर भी नहीं मिलता। सत्येव सोम सोम एद मगर आसीत अर्थात पहले यह सब साथ ही था, पहले अव्याकृत अर्थात अपरगट था, बाद में नाम रूप युक्त होकर प्रकट हो गया। युक्ति से जो उपादान कारण और कार्य की अमनता सिद्ध होती है, जो वस्तु होगी ही नहीं उसका उत्पन्न होना संभव नहीं है। मिट्टी से काट बनेगा ही कैसे? युक्ति के अतिरिक्त दूसरे शब्द प्रमाण भी है। यदि उत्पात से पहले सर्वत्र सब का ना होना सिद्ध होता तो दही दूध से ही क्यों बनता है, मिट्टी से क्यों नहीं बन जाता? अथवा मिट्टी से बनने वाला कड़ा दूध से क्यों नहीं बनता? जिस पदार्थ में जैसी विशेषता है वह दूसरे में नहीं हो सकती। इस प्रकार यह जगत उत्पन्न होने से पहले भी अपने सात रूप में ही था, यह सिद्ध होता है। वस्त्र सूत से बनाया जाता है, जब तक वह सूत रूप में रहता है तब तक वह कपड़ा नहीं कहा जाता, परंतु बुन जाने पर उसको वस्त्र उसकी वस्त्र संज्ञा हो जाती है। बुनने से पहले और बुना जाने पर इन दोनों को दोनों ही वस्त्रों में वस्त्र अपने ही कारण में स्थित रहता है। सूत से उसका रूप भिन्न होने पर भी वह सूत से अभिन्न है। इसी प्रकार जगत के सर्व संबंध में भी है। इससे सिद्ध हुआ कि उपादान कारण और कार्य में अमनता अनन्यता है, भिन्नता नहीं। जैसे देह त्याग त्यागने पर मान और प्राण और इंद्रियां देह से बाहर निकलती हुई दिखाई नहीं देती तो भी उनका अस्तित्व रहता ही है। इसी प्रकार परले काल में सृष्टि के विलीन हो जाने पर भी जगत का अपरगट रूप से अस्तित्व अवश्य रहता है। ऐसे भी कार्य की कारण में सत्ता सिद्ध होती है। श्वेता श्वेर त्वं स्त्री त्वं कुमार उत्वा कुमारी अर्थात तुम स्त्री तुम पुरुष तू ही कुमार और कुमारी है। अथवा छंदोग इस देवता ने तेज आदि तत्व से बने देह में जीव रूप से प्रविष्ट होकर नाम रूपों को प्रकट किया। इन वर्णनों में ब्रह्म के स्वयं की जीव रूप से उत्पन्न होने की पुष्टि हुई है। इसमें ब्रह्म द्वारा प्रतिकूल सृष्टि रचकर अपना हित करने का दोष दिखाई देता है, क्योंकि जगत में जन्म लेने वाले जीव दुख सुख रूप कर्म फल होते हैं, उनमें प्रविष्ट हुआ ब्रह्म भी उनके दुख आदि भोगों को भोगेगा। तो जो इस प्रकार दुख भोग आदि को प्राप्त होने के लिए जन्म मरण के पवर में स्वयं फंसे वह ब्रह्म सर्वज्ञ अथवा दूरदर्शी नहीं हो सकता, परंतु वह शंका ठीक नहीं है। ब्रह्म और जीव में भिन्नता है, इसलिए ब्रह्म दुख भोग आदि में लिप्त नहीं है। यह बात अगले सूत्र में स्पष्ट करते हैं। जो जीवात्मा के अंतर्गत है परंतु जिसका देह है वह जीवात्मा उसे नहीं जानता। जो जीव का प्रकृति निवृत्ति रूप नियमन करता है वह अंतर्यामी ब्रह्म है। ब्रह्मधारण के अनुसार जीव के संबंध में कहा है कि उस पार ब्रह्म में अधिष्ठित हुआ यह एक दूसरे देह में अवस्थान करता है। ऐसे भी जीवात्मा और ब्रह्म का भेद स्पष्ट सिद्ध हुआ। महाशक्तिशाली ब्रह्म अपने संकल्प के द्वारा जग की रचना कर उसमें प्रवेश कर लीला करते हैं। जब वह जगत जीर्ण हो जाता है तब वे मकड़ी के जाले के समान उसका संहार कर देते हैं। इसलिए यह सिद्ध है कि उक्त सूत्र में कहा दोष उनको नहीं लगता है। पत्थर काष्ठ लोष्ट ढेला आदि ब्रह्म नहीं हो सकता क्योंकि ब्रह्म तो चेतन आनंदमय और सब की रचना करने वाला है। पत्थर काष्ठ आदि में वह कारण रूप से अनुगत है इसलिए उन पदार्थों से अपेन कहा जाता है। इस प्रकार जीव के अंतर में प्रवेश कर वह उसको नियमित करता है। इस प्रकार जीव से अपेन रह कर भी वह भिन्न है क्योंकि जीव अल्पबुद्धि वाला और सुख दुख आदि का भोगता है परंतु ब्रह्म सर्वज्ञ और संसार के कर्म फल आदि भोगों से निर्लिप्त है। उसे जगत के भोग स्पर्श नहीं करते। वह हित अहित दोनों से परे है। इस प्रकार जीव और ब्रह्म का भेद सिद्ध है। यदि यह शंका करो कि वस्तु का निर्माण करने के लिए समान साधन और सक्रियकर्ता का होना आवश्यक है, इनके बिना निर्माण कार्य नहीं हो सकता, ऐसे ही ब्रह्म के पास भी समान और साधन आदि होना चाहिए, अन्यथा वह जगत की उत्पत्ति का कार्य नहीं कर सकता। ब्रह्म के पास ऐसा कोई समान साधन आदि न होने से वह सृष्टि नहीं रच सकता, ऐसा कहना ठीक नहीं। जैसे दूध अपने स्वभाव में ही दही रूप हो जाता है और उनका रूप बदलने के लिए साधन आदि की आवश्यकता नहीं होती, मकड़ी भी अपनी शक्ति से ही जाला बुन डालती है, वैसे ही ब्रह्म अपनी शक्ति से ही सृष्टि की रचना करता है। जैसे लोक में देवता अथवा योगी आदि सिद्धगण अपनी अद्भुत शक्ति में से ही बिना किसी साधन और समान के अपने इच्छित को साकार प्रकट कर लेते हैं, वैसे ही ब्रह्म अपनी इच्छा मात्र से ही जगत की रचना करता है। ब्रह्म को जगत का कारण मानने पर यदि उसे अवैव रहित माने तो पूर्ण रूप से जगत के आकार में परिणत होने का दोष उस पर लगेगा और यदि उसे अवैव सहित माने तो उस पर यह दोष आवेगा कि उसके कुछ अंश बकारग्रस्त होकर जगत के रूप में प्रकट हो गए हैं। परंतु जहां ब्रह्म अवैव रहत है ज्योति उसे निष्क्रियम निष्कलम क्षमतम निर्वद्यम निरंजनम बताती है। इस अवस्था में उसके श्रवण मनन आदि का उपदेश भी दूषित होता है। यदि वह अवैव रहत है, अवैव सहत है, तो उसे मरणशील मनना हुआ। इसका निवारण नीचे सूत्र करता है। ऊपर के सूत्र में ब्रह्म के संबंध में जिस दोष की शंका की गई है वह निरर्थक है, क्योंकि ब्रह्म पक्ष में विचार श्रुति पर आधारित है। उसने जैसे संसार की उत्पत्ति ब्रह्म से बताई है, वैसे ही वह ब्रह्म को निर्विकार भी कहती है। उसे अवैव रहत कहने के साथ ही उसका संपूर्ण रूप में जगतकार होना नहीं कहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड उसके एक पाद में होना कहा है। इसे ब्रह्म को जगत का कारण मानने में कोई दोष नहीं ठहरता। इससे पहले सूत्र में ब्रह्म के संबंध में श्रुति प्रमाण उपस्थित किए, उनके स्वा अन्य प्रमाणों द्वारा जीवात्मा में भी बहुत सी विचित्राएं मिलती है। योगियन अपनी योग शक्ति के बल पर अनेक प्रकार की रचनाएं करते देखे गए हैं। इच्छा शक्ति के बल पर बहुत से विचित्र कार्य हो जाते हैं। प्राचीन ऋषियों ने अपने शाप के बल पर ना जाने कितनों को पसंद किया और जीवित कर दिया। इन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि ब्रह्म की रचना शक्ति का वर्णन श्रुति ने यथार्थ रूप से किया है। सांख्य मत के अनुसार यदि उनके प्रधान को जगत का कारण मानने लगे तो उनमें अनेक दोष मिलेंगे, क्योंकि वे ब्रह्म की पंक्ति ही प्रधान को भी सीमित या अवैध सहत नहीं मानते। जिन दोषों का आरोप वे ब्रह्म पर करते हैं उन सभी दोषों से प्रधान भी नहीं बचता। इसलिए ब्रह्म ही जगत का अनन निमित्त उपादान कारण है। ऐसा ही श्रुति वाक्यों द्वारा प्रमाणित है। ब्रह्म का स्वरूप शक्ति विशिष्ट है। देवात्म शक्ति प्रवृत्ति श्रुति परम ब्रह्म को शक्ति मान सिद्ध करती है। स्वकाम्यत कहकर उसने सृष्टि रचना का संकल्प किया, इनसे भी ब्रह्म की शक्ति का बोध होता है। सत्यम ज्ञान अनंतम प्रवृत्ति श्रुति ने उसे सत्य ज्ञान और अनंत कहकर महान शक्ति वाली सिद्ध किया है। यदि कहो कि ब्रह्म इंद्रिय आदि से रहत होने के कारण जगत की रचना करने में असमर्थ नहीं है, जगत की रचना करने में समर्थ नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं। इसका उत्तर पहले दे चुके हैं, जैसे श्रुति भी इस संबंध में स्पष्ट करती है। अर्थात वह ब्रह्म हाथ पांव आदि इंद्रियों के बिना भी सर्व कार्यों के करने में समर्थ है। इसलिए ब्रह्म का ही जगत कारण होना सिद्ध है। ब्रह्म परिपूर्ण होने से प्रयोजन रहता है, पूर्ण काम को स्वार्थ में प्रवृत्ति क्यों होगी? प्रयोजन के बिना जग का कारण मान लेने पर ब्रह्म में उन्मत्तता आदि का दोष भी आ सकता है, यानी शंकों का समाधान अगले सूत्र में किया जाता है। ऊपर के सूत्र में जो शंका की गई उसका निराकरण किया जाता है। ब्रह्म के परिपूर्ण होने पर भी सृष्टि रचना से उनकी प्रकृति, उनकी प्रवृत्ति केवल लीला के लिए है। मंडूक बिच ऐसा कहकर इसे स्पष्ट कर दिया है, अर्थात देव की सब लीला स्वाभाविक है, जो आपत काम है उसमें स्प्रीहा होड़ कहाँ है। ये सूत्र में ब्रह्म पर दो दो शर्तें हैं। विषमता का अर्थात किसी को उच्च किसी को नीच जोनी देने से पक्षपात का, और निर्दयता का अर्थात जीवात्मा को नरक आदि की यातना देने का। अब इनके निराकरण में बृहदारण्यक देखिए, और पुणो वैपुणेनम कर्मणा भवति पापा पापेन, अर्थात यह जीव पूर्ण कार्य से पुण्यवान और पाप करने से पापी होता है, तो पाप करने वाला दुख भोगे। इनमें निर्दयता कैसे? यदि पापी पुरुष स्वर्ग का सुख भोगने लगे तो पूर्ण कर्म कोई क्यों करेगा? क्योंकि पूर्ण कर्मों की अपेक्षा पाप कर्मों में सरलता प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी उत्तर में विषमता के अरूप को भी निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि पूर्ण आत्मा को उच्च योनि प्राप्त होना स्वाभाविक और न्याय संगत है। यदि पापी को उच्च योनि और पूर्ण आत्मा की आदम योनि प्राप्त होने लगे तो ब्रह्म में अन्याय का दोष रूपित होगा। इससे सिद्ध हुआ कि जीव अपने कर्म के फल स्वरूप उत्तम अथवा अधम योनि प्राप्त करता है, और वैसा ही सुख दुख रूपी फल भोग करता है। कहकर श्रेष्ठ कर्म की महत्ता प्रकट की गई है। यदि यह कहो कि सृष्टि के पहले एकमात्र ब्रह्म था, इससे विभिन्न जीवों का और उनके कर्मों का कोई विभाग नहीं था, तो वह इस बात का सूचक नहीं है कि ब्रह्म ने जीवों के शुभाशुभ कर्मों की अपेक्षा रखकर ही भोगता भोग और भोग सामग्री और रूप इस जगत को प्रकट किया, जिससे उसमें विषमता और निर्दयता का दोष आरोपित होता है। तो इसका निराकरण यह है कि जीव और उसके कर्म अनादि है। कर्म के अनादि होने में अनावस्था का दोष भी नहीं लगता। धाता यथा पूर्वम कल्पतम के अनुसार ब्रह्म ने पूर्ण कल्प के समान ही सृष्टि रचना की। इससे सिद्ध हुआ कि जीवों के स्वभाव के अनुसार ही ब्रह्म उन्हें कर्मों में प्रेरित करता है। वह उनके स्वभाव और रूप आदि का बदलता नहीं। इस प्रकार ब्रह्म में किसी दोष का आरोप सिद्ध नहीं होता। जीव और उनके कर्मों का अनादि होना युक्ति संगत भी है। उत्पत्ति यह है कि कारण के साथ भाव से ही कर्म का सद्भाव हो सकता है। उपलब्ध यह है कि प्रत्येक जीव कर्म करने में लगा है और अजोनिता शाश्वतो एम प्राणो न हन्यन्ते हनुमाने शरीरे, अर्थात यह जीवात्मा नित शाश्वत और पुरातन है। देह के नष्ट होने पर वह नष्ट नहीं होता। के अनुसार जीव अनादि है तो उसके कर्म भी अनादि होने में क्या संदेह है। ब्रह्म में सभी कर्मों की संगति है। स्मृति कहती है कि ऐश्वर्य योग के कारण भगवान वृद्ध धर्म समन्वित करके प्रसिद्ध हैं, परंतु उनमें किसी प्रकार का दोष रोपण नहीं, परस्पर वृद्ध गुणों का समाधान होता है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि समान एवं वृद्ध सभी प्रकार के कर्मों की ब्रह्म में संगति होने से वही जगत का एकमात्र कारण है, दूसरा कोई नहीं है। प्रथम पादा समापत।